ओम शांति। तो जैसे हमारा टॉपिक है प्रभु परवानों से अलौकिक मिलन, तो आज जो हमारे बीच परवाने बैठे हैं सरेंडर्ड भाई, सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे बीच में है रोहित भाई जी। रोहित भाई जी, सब लोग एक हाथ की ताली से प्लीज अभिवादन करें। आप पिछले लगभग 35 सालों से ज्ञान में हैं और मधुबन में रोटी डिपार्टमेंट जो ज्ञान सरोवर है आप संभालते हैं, साथ साथ जो यहाँ पे भट्टियाँ होती हैं उसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, ज्ञान योग, हम इनके अनुभव सुनेंगे कैसे सारी चीज़ें बैलेंस करते हैं। फिर साथ में है हमारे आदरणीय सुरेश भाई जी। आप शिमोगा कर्नाटका से हैं और बाबा के ज्ञान में बहुत 78 से ज्ञान में है। ज्ञान सरोवर जब से बना तब से आप सरेंडर हैं और यहाँ पे जो हमारा सोलार डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा जो बड़ा भंडारा है जहाँ पे जो सारा स्टीम वगैरह होता है, तो भाई साहब आप उसकी सारी जिम्मेवारी संभालते हैं सुबेरे 3 बजे से लेके पूरा रात तक। हाँ, फिर भी कर्मयोगी आप देखेंगे, इनके भी हम अनुभव सुनेंगे। और फिर हमारे साथ में है घनश्याम भाई जी। आप कोटा से हैं, यहाँ पे जो हमारी स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी है आप उसमें सेवाएं देते हैं और आप बाबा के पुराने बच्चे हैं, काफ़ी पुराने बच्चे हैं, 1989 से आप ज्ञान में हैं। और सुभाष भाई जी, आप भुवनेश्वर से हैं और यहाँ पे जो हमारा वाटर डिपार्टमेंट है उसमें आप सारी सेवाएं देते हैं, आप सबको जो सुबह ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है पूरा उसका ध्यान रखते हैं आप। तो ऐसे चारों हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। मधुबन में आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है भट्टियों में, खास करके ज्ञान सरोवर में मैंने देखा, यहाँ पे छोटे छोटे जैसे इंटरव्यू इंटरेक्शंस जो होते हैं, तो जो छोटे छोटे लोग हैं जो कभी स्टेज पे नहीं आते हैं आपको उनके भी अनुभव सुनने को मिलते हैं। वैसे तो मधुबन में जो महारथी हैं हम उन सबको यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, पर जो सच में फील्ड में जो लोग होते हैं कैसे अपनी सेवाएं करते हैं, कैसे स्थिति बनाते हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा था, तो ये सारा हमें सुनने को भी मिलेगा और हमें प्रेरणाएं भी मिलेगी। तो ऐसे इसी के उद्देश्य से ये एक सेशन है। तो सबसे पहले मैं रोहित भाई जी आपसे एक क्वेश्चन शुरू करूंगा। आप बाबा के काफ़ी पुराने बच्चे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप ज्ञान में आए। हाँ, आप ज्ञान में आए वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने साथ 35 लोगों को, पूरे परिवार को ज्ञान में लेके आए, तो ये कैसे चमत्कार हुआ? ज्ञान में आए और कैसे परिवार को सबको ज्ञान में लाए, इसके बारे में आप हमें बताएं।
ओम शांति। सर्वप्रथम बाप दादा का दिल से थैंक्स जो आज आप सबके मध्य अपना कुछ बाबा के द्वारा दिया हुआ अनुभव सुनाने का सौभाग्य दिया। वैसे तो आप सब कभी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव रहे हैं, लेकिन जैसे आज के इस कार्यक्रम में अनुभव की लेन देन, ये सुंदर परंपरा हमारे मध्य है। मैं जब ज्ञान में आया 1987 में छत्तीसगढ़ में लौकिक जन्म स्थान, और उस समय मैं एमए कर रहा था। बाबा का परिचय बहुत ही सुंदर तरीके से मिला। हमारे गांव के पास ही एक छोटा सा प्रदर्शनी लगा हुआ था। प्रदर्शनी में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप चलो, लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ। बाद में एक घर में गीता पाठशाला चालू हुआ तो मुझे बहुत फोर्स किया लोगों ने कि आपको जरूर जाना चाहिए, तो मैं लोगों के कहने अनुसार गया। तो जब पहली दिन गया तो वहां की जो लोकल दीदी है वो मुरली सुनाने के लिए आ चुकी थी, लाल लाइट जल रही थी और मैं पीछे जाके बैठ गया। तब तक मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। सब लोग लाल लाइट में बैठे हुए थे, मैं भी पीछे बैठ गया। योग के बारे में कुछ पता था नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कौन क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सफेद लाइट हो गई और मुरली चली। बाबा की मुरली में पहले दिन ही ये शब्द था कि बच्चे फिर ये जो भक्ति मार्ग है इसका फल देने में आया हूं। तो मैं लौकिक में ही शिव की बहुत पूजा करता था, प्रतिदिन मंदिर में जलाभिषेक करता था, पानी चढ़ाता था। पहले दिन बाबा की मुरली सुनते ही पूजा पाठ बंद कर दिया। अभी तक पता नहीं था बाबा की मुरली है। दूसरे दिन वापस गया और बाबा ने कहा कि बच्चे फिल्म दोजक का द्वार है। तो और कुछ बुरी आदत तो नहीं थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में फिल्म बहुत देखता था। दूसरे दिन ही बाहर निकल के कान पकड़ लिया कि आज के बाद फिल्म नहीं देखना है। दूसरे दिन से फिल्म बंद। तीसरे दिन बाबा ने बोला कि जैसा अन्न वैसा मन, खान पान को बहुत शुद्ध करना है। तो होटल में चाय पकौड़ा चलता था, वो भी बंद कर दिया। तो बाबा की मुरली से ही मेरा जन्म हुआ। फिर तो जैसे हर एक के घर में थोड़ा हंगामा होता है, हमारे घर में भी थोड़ा हंगामा शुरू हो गया। ये कौन सी टीचर बहन आती है, हमारे बेटे को बिगाड़ रहे हैं, भक्ति बंद करवा दिया, होटल का चाय पानी बंद करवा दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मेरे अंदर जीवन में परिवर्तन देखा तो सब धीरे धीरे मानने लग गए। और इस तरह से लौकिक परिवार में सबसे पहले बाबा ने मुझे चुना। उसके बाद तो हमारी तीन भतीजी वर्तमान समय समर्पित है, छोटा भाई भी समर्पित है, घर में गीता पाठशाला है, करीब 40 लोग क्लास करते हैं। तो बुआ जी का परिवार, दीदी बड़ी बहनों का परिवार। तो जैसे सैलू भाई ने बताया, मुझे बाबा ने लाया, लेकिन मेरे साथ साथ करीब 40 लोग बाबा के ज्ञान में लौकिक से अलौकिक बन गए। ओम शांति।
सुरेश भाई जी, आपको देखो भक्ति में भी मतलब गीता का अच्छा ज्ञान है, शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान है। शिवाबा का आपको कैसे परिचय मिला? शिवाबा आप ज्ञान में कैसे आए?
ओम शांति। मैं सपने में भी सोचा नहीं था हमको ज्ञान मिलता है, मैं पढ़ाई पढ़ता हूं करके, क्योंकि हम गांव में रहने वाले, शहर से 60 किलोमीटर दूर गांव है, तो घर में इतना अनुकूल नहीं है। तो बारिश आए तो हमारा गांव में खेती वगैरह अच्छा चलता था, बारिश नहीं हुआ तो खेती अच्छा नहीं चलता था। तो उस समय थोड़ा सा अनाज के लिए व्यत्यास हो जाता था। तो उस समय मैं 8वीं पढ़ता था, तो घर में क्या किया, ये गांव वाला क्या पढ़ेंगे, तो हम छोड़ देना, स्कूल छोड़ के दूसरे घर में आप गाय वगैरह चराएंगे गएंगे तो एक साल के लिए कुछ अनाज वगैरह मिलेगा करके मम्मी पापा ने मेरे को स्कूल छुड़वा दिया। 8वीं पूरा होने के बाद तो दूसरे घर में गाय चराता था। तो एक साल तक कैसे किया, लेकिन गाय चराते चराते बहुत मैं दुखी हो जाता था। क्यों, मैं पढ़ना है, हे सरस्वती गणपति, ऐसे भगवान को हमको पहले मालूम नहीं था ना, उन लोगों को भगवान समझकर याद करता था, हे सरस्वती गणपति हमको पढ़ाई पढ़ना है, कैसे भी करो। तो एक साल पूरा होने के बाद फिर मैं अपना मामा का घर में आया। तो हमारा मामा जी दूसरे शहर में कार्य करता था, नौकरी करता था, तो उसी समय उन्होंने गांव में आया था। तो मेरे को पूछा, भाई क्या स्कूल छोड़ दिया करके पूछा। इतना पूछते ही मेरे को आंखों में गंगा यमुना चालू हो गया। फिर उसके बाद मामा ने क्या सोचा, तो नानी घर में अकेले है, आप इधर ही नजदीक स्कूल है हाई स्कूल, तो ज्वाइन हो जाओ, अभ्यास करो। तो उसके साथ साथ मैं 9th और 10th पूरा पास हो गया। उसके बाद मेरा मामा जी ने इतना अच्छा पढ़ता है करके 11वीं 12वीं भी पूरा करवा दिया। उसके बाद शहर में लेके आया, इतना अच्छा पढ़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज में हम ऐड करेंगे तो फीस कम रहता है तो हम पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। तो मेरे को शहर में लेके आया तो हम सह्याद्री कॉलेज में एक स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उस समय भक्ति जहां देखो वहां भक्ति करता था। तो उधर का एक बहुत प्रचलित स्वामी जी है राघवेंद्र स्वामी जी करके, उनका मठ में बहुत लोग चलता है। तो राघवेंद्र स्वामी जी को बहुत मैं मानता था तो रोज कॉलेज पूरा होते मठ में जाता था वो का मंदिर में राघवेंद्र स्वामी जी का पूजा करने के लिए। तो ऐसे करते करते चारों तरफ भक्ति करता था। एक स्वामी जी था 45 डेज उनका स्पीच चलता था, तो स्पिरिचुअल स्पीच रोज उसको सुनने जाता था। तो उन्होंने बोलता था भगवान सर्वव्यापी बोलता था, फिर भगवान हम भी भगवान बन जाएंगे बोलता था। तो मेरे को कंफ्यूज हो गया भगवान कौन है, एक तरफ बोलता है हम भगवान बनेंगे, दूसरी तरफ बोलते भगवान सर्वव्यापक है, तो तीसरे तरफ बोलते भगवान है ही नहीं है, ऐसे अलग अलग तरीके से बात कर रहा था वो स्वामी जी। मेरे को आश्चर्य लगा भगवान कौन है। तो उनका 45 डेज कार्यक्रम पूरा होने के बाद उसी ग्राउंड में बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, बाबा का एग्जीबिशन आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी करके बोर्ड लगाया था, मैं क्या है करके देखने के लिए गया। उधर एक चित्र था पुजारियों का पुजारी करके, एक बहुत बड़ा चित्र। तो पुजारियों का पुजारी चित्र में राघवेंद्र स्वामी जी गद्दी को दूसरे छोटे छोटे स्वामी जी पूजा कर रहा है। तो राघवेंद्र स्वामी जी हनुमान को पूजा करता है, तो हनुमान राम को याद करता है, राम ईश्वर को याद करता है। दूसरे तरफ किस स्वामी जी का प्रवचन सुनाना, वो अपना बड़ा स्वामी को पूजा कर रहा है, तो बड़ा स्वामी गणेश को याद कर रहा है, गणेश पार्वती को याद कर रहा है, पार्वती शंकर को याद कर रहा है, तो शंकर वो ज्योति को याद कर रहा है। तो हमको समझ में आ गए इधर आएंगे तो सब एक साथ मिल जाएगा करके, तो हमको ज्ञान मिला। तो 1978 में 15/12/1978 शाम को 6 बजे गुरुवार के दिन शिवमोग्गा में बाबा का बच्चा बनकर जन्म हो गया। ओम शांति।
हमारे भी सुभाष भाई भी हैं, सुभाष भाई को हम प्यार से स्वामी जी बोलते हैं। ये बाबा के बच्चा बनने से पहले सन्यासी थे, तो आप महाराज सन्यासी कैसे बने, बाबा ने क्या साक्षात्कार कराया, बाबा का परिचय आपको कैसे मिला?
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम अव्यक्त बाप दादा को मैं धन्यवाद देता हूं, उस दिन का और इस दिन आज का दिन याद आ रहा है। 1995 में जब अव्यक्त बाप दादा आकर के इस स्टेज को उद्घाटन किए थे, बैठे थे, उस समय पहला मुलाकात हुआ था अव्यक्त बाप दादा से। तो उस दिन को देख करके आज बड़े खुशी हो रहे हैं आप सबके पास। पहले तो शैलेंद्र भाई को भी धन्यवाद देता हूं जो कि आप सबके सामने कुछ अनुभव शेयर करने के लिए जो सुजोग दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले सत्संग की महिमा अपरंपार कहा गया है। आज सबके साथ देख करके सत्संग की याद आता है। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में पहले सत्यता का बोध होता है, पाप क्षय होता है, आगे के लिए प्रेरणा मिलता है। आज के सत्संग को हो, परिवार को हो, जो भी है, आप सब भट्टी को हो, इस भट्टी में हम सबका आप लोग ने स्वागत किया, अनुभव कहने के लिए जो चांस दिया है आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। अनुभव के साथ 40 साल पीछे जाना पड़ेगा, 4 मिनट में 40 साल के पीछे का अनुभव कहना पड़ेगा। बचपन से लौकिक जीवन की सबका अनुभव रहता है। 7 साल की उम्र से हमको हरिनाम की नाम भजन करने का बहुत शौक था। लौकिक जीवन में हम छोटी सी गांव में पैदा हुए हैं, शिक्षागत योग्यता ज्यादा नहीं है, 10 तक गए थे, मध्यम वर्ग के पैदा हुए थे। लौकिक में हम 4 भाई बहन हैं, माता पिता को मिलाकर 6 हैं। जब 10 साल की उम्र था तब भजन कीर्तन में मन गीता भागवत में अध्ययन करने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में एक ही लक्ष्य था केवल भगवान को पाना। और भगवान को पाने के लिए इसलिए था, पढ़ाई में इतना मन रुचि नहीं था, क्योंकि हम जब कहानियां सुनते थे, ध्रुव एवं प्रहलाद की कहानी सुनते थे, भगवान को पाने के बाद क्या हो जाएगा, इंद्रपद मिल जाएगा, इस पढ़ाई में क्या रखा है। इसलिए भगवान की खोज बहुत था, पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट नहीं था, भगवान की खोज में इतना इंटरेस्ट था। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि दोनों का बैलेंस रखना है, क्योंकि उस समय में भावना में थे, अभी तो ज्ञान है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो इस प्रकार की 10 तक पढ़ाई के बाद जीवन में वैराग्यपन आया, भक्ति तो बीच में चलता रहा, एवं 10वीं के बाद मेरे इंडिपेंडेंट रहने का मन किया, तो हम एक अनाज की दुकान में भी 2-3 साल नौकरी किया। इसके बाद घर का भी जो माता पिता को खुश करने का देख लिया। इसके बाद भक्ति में जब देखा कुछ मिला नहीं, मैं सोचा मुझे संन्यास लेने से कुछ मिल जाएगा, तो इस प्रकार की घर से संन्यास लिया। संन्यास लेने से पहले आपको एक अनुभव कह देता हूं, कैसे किसी को प्रेरणा देकर बाप दादा ने साक्षात्कार कराते हैं, तो 2 मिनट में आपको अनुभव कह देता हूं। 89 में जब हम पूजा रूम में पूजा करते थे, मेरे पास सेपरेट घर में भी एक पूजा रूम होता था, संध्या एवं सवेरे 1-1 घंटा कंपलसरी जाता था संध्या आरती करने के लिए। एक दिन की बात था, तबीयत बहुत खराब था, उठने का शक्ति नहीं था। मैंने उस दिन संकल्प कर लिया, आज तबीयत ठीक होगा तो भगवान आपको भोजन कराऊंगा, जो भी संध्या आरती भोग लगाना है, नहीं कराएंगे तो आप भी भूखा मैं भी भूखा, जैसे कहते ना भावना का भाड़ा भगवान भी देता है। तो भावना में हम उसी रूम में कोठरी में पड़ गए और पूजा पाठ कुछ भी नहीं किए। ठीक रात को 12 बजे गया और घर लोग को मालूम था जो बिना पूजा करके खाएगा नहीं, तो भोजन मतलब पूजा रूम में अपना भोजन का रात का भोजन रख लिए और मैं दरवाजा बंद करके रह गया, अंदर में रहा। ठीक 12 बजे एक श्वेतवस्त्रधारी बुजुर्गो मेरा घर के अंदर में पूजा रूम में प्रवेश किए और मेरे खटिया के पास एक आधा हम बनाया था, तो आकर के खड़े हो गए। मेरे बहुत खुशी हुआ कौन आए हैं, लेकिन वो मेरे कुछ बोले नहीं। मैं इंतजार कर रहा जो आए हैं अपना परिचय देंगे कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, आकर के मेरा सिर के पास खड़े हो गए। मैं भी देख रहा हूं, नयन मुलाकात कर रहा हूं, वो दृश्य आज भी बड़े अद्भुत था, रोमांचक था। मैं भी नयन मुलाकात कर रहा हूं, कुछ नहीं कहे। 1 सेकंड के बाद जैसे वो मौन रहे मैं भी मौन रहा। कुछ समय के बाद वो अपना हाथ को जैसे हाथ को जैसे बच्चों को उठाने के लिए जैसे हाथ बहुत सारे बाबा कहते ना वो चित्र था, तो हाथ जैसे उठाए तब भी मैं कुछ बोला नहीं। जैसे बच्चों को गोद को उठाए उठाने जैसे प्रयास किए तो मेरे सिर के पास एक हाथ रख दिए और पांव की तरफ से एक हाथ लेकर के मेरे को उठाए, जैसे कि मतलब स्पर्श किए, एक मेरा नया अनुभव क्या हुआ जीवन का, जैसे कुछ रोमांचित हो गया एवं खुशी के झलक आया। तो मैं सोचने लगा अब क्या करेंगे, तो देखते देखते मेरे को गोद में लेकर के विराट काया रूप जैसे बड़ा रूप हो गए। तो मैं देखता था और क्या करेंगे, देखते देखते मेरे को ऊपर को आकाश की ओर ले गए, बड़े खुशी लग रहा था, आनंद भी उड़ते जैसे लग रहा था। तो बाद में बहुत दूर जाने के बाद मेरे मन में संकल्प आया अब क्या करेंगे, मैंने थोड़ा नीचे देख लिया बहुत दूर ले आए अब क्या करेंगे, इतने में ऊपर से वो नीचे छोड़ दिए। जैसे ही छोड़ दिए मैं एक चिल्लाया आवाज किया, वो आवाज किया था मुझे तो याद नहीं, वो घर के जो 5 लोग थे उस समय में एक बुजुर्ग बाहर आए थे लघु शंका के लिए, तो तुरंत आकर के मेरे दरवाजे के पास पहुंच गए और कहने लगे सुभाष सुभाष क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बोला और चारों तरफ लाइट देखकर देखने आश्चर्य से देखने लगा क्या हुआ। तब तक मेरा बॉडी में एक पसीना आ गया था और पूरा रिलैक्स, मैंने कोई शरीर का मैंने जैसे कि बीमारी का कोई अंश भी नहीं था और पूरा फ्रेश था मैंने। तब वो देखा, देखने के बाद फिर वो गायब हुआ। इसके बाद उसने संध्या आरती किया, रात को 12 बजे संध्या आरती किया, घंटा शंख बजाया जो भी गया ना, उस प्रकार की उस दिन की घटना था। इसके बाद फिर सेकेंड घटना 92 में मम्मा की साक्षात्कार हुआ और सब बाद में फिर आगे के बढ़ा हुआ। इस प्रकार की भक्ति में बहुत साक्षात्कार भी हुए और पूजा में भी साक्षात्कार हुए। तो इस प्रकार की हम संन्यास के बाद फिर ये संन्यास में लिया, एक साल तक मठ में रहा, मठ के अनुभव तो अलग है। इसके बाद फिर 93 में ईश्वरीय ज्ञान मिला। ओके, इससे मिला फिर आगे के में। तो इस प्रकार की संन्यास लाइफ में देखा तो उसमें कोई खास नहीं लगा, क्योंकि संन्यास लाइफ का एक अनुभव कहता हूं मैं, मठ से क्यों वापिस आ गया। तो एक रघुदास का मठ था कटक के पास, उड़ीसा भुवनेश्वर के पास, तो वहां गया था, एक महीना रुका। लेकिन वहां का जो साधु संत में जो क्रोध भाव, मुझे अच्छा नहीं लगता था बचपन से, क्यों मुझे कोई क्रोध में बात करे बा मैं किससे क्रोध से बात करूं, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन की बात था, वो सत्संग चल रहा था, वो थोड़ा भजन कीर्तन में ताल ठीक से नहीं पड़ा, राइट साइड में वो बैठा था, इतना थापड़ मार दिए तो मैं तो दूसरी साइड में था। मैं बोला आज इनका हो गया तो कल मेरा भी हो जाएगा, इसके भय से मैं तो गुरुपन का मेरा भाव ही निकल गया। तो इस तरह से वैराग्य मेरे को वहां से भी वैराग्य आया। और दूसरा था, घर में जो हम गीता पाठ भागवत अध्ययन करते थे घंटों घंटे दर के, तो आश्रम में वो चांस नहीं मिला, क्योंकि हमेशा गुरु सेवा करने में, भय से गुरु सेवा करने में टाइम चला जाता था, अपने अध्ययन का समय नहीं मिलता था। क्योंकि घर में हम लंबा समय तो जितना समय चाहते थे गीता भागवत अध्ययन पारायण करते थे, और मन में जो प्रश्न क्वेश्चन होता था वो सेटिस्फाई करने के लिए हम ढूंढते थे। लेकिन वहां जाकर देखा तो मेरे प्रश्न का आंसर नहीं मिला, क्योंकि खास करके मेरा प्रश्न था, मैं उत्तम गुरु की तलाश में था जीवन में, जो कि मेरा प्रश्न का उत्तर बिना पूछे दे देगा तो मैं इसको सच्चा गुरु मानूंगा। लेकिन बिना पूछे तो कोई दिया नहीं, पूछने के बाद भी जो आंसर दिए तो मेरे सेटिस्फाई नहीं हुआ। इस प्रकार की वहां से मैं वापिस आ गया। वापिस आकर के मन में एक ही संकल्प लिया, जो मुझे आज से संन्यास भी नहीं लेना है व गृहस्थी भी नहीं बनना है, अब जब तक जीना है कुछ कर्मयोगी बन करके माता पिता का सेवा करना है। इसके बाद फिर ज्ञान मिला।
ओम शांति। तो बाबा ने जिन मूर्तियों की पूजा करते थे आपको स्वयं देवता बनने की स्कूल में ले लिया। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम भाई जी से। घनश्याम भाई, आप जब ज्ञान में आए तो आप तो अपने परिवार से इकलौते निकले, तो क्या आपको भी कोई विघ्न परिस्थिति या किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आप बाबा के बच्चे बने? तो
शांति। ज्ञान में आने से तो लौकिक परिवार तो ज्ञान में था ही नहीं, तो परेशानी तो आती है, क्योंकि जब धारणाओं में चलते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनके घर का खाना नहीं खाना, तो माँ को भी बुरा लगता है, तो सभी को बुरा लगता है, क्योंकि बचपन से उन्हीं के साथ रहे हैं और उन्हीं के साथ खाना खाया, फिर एकदम छोड़ते हैं, तो सभी परिवारों में होता है ये बात। तो थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं हुई, इजीली ज्ञान में चलने लगे। और जो वहाँ हमारी दीदी थी उसने हमको बहुत पालना दिया, उनकी वजह से वो हर हमको हर प्रकार से सहयोग देती रही, और सहयोग से पालना से ही हम धीरे धीरे ज्ञान में चलने लगे।
आपको ज्ञान कैसे मिला?
ज्ञान कैसे मिला ये तो बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। ज्ञान मेरे को एक विचित्र तरीके से मिला। हम 10 क्लास में पढ़ रहे थे, तो मेरे लौकिक पिताजी प्रिंसिपल थे, तो हर माँ बाप को होता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी डिवीजन से पास हो, तो वही स्थिति मेरे पिताजी की भी थी। तो मेरा रूम ऊपर था, मेरे पिताजी का रूम नीचे था, तो रोज मेरे को सुबह 4 बजे उठाते थे और कहते थे पढ़ाई करो, बोर्ड की परीक्षा है, तो रोज उनका रूटीन था। ऐसे ही चल रहा था, जनवरी का मास था, तो जनवरी में सर्दी होती है, तो उनका रूटीन था रोज के जगाने का। अचानक ही एक दिन की घटना है, तो पिताजी ने मेरे लिए सब अरेंजमेंट कर रखा था, बेड के पास ही टेबल थी, उस पर बुक वगैरह घड़ी वगैरह सब रखा हुआ था। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते हम रात को जल्दी सो गए। अचानक क्या हुआ कि 2:30 बजे करीब, क्योंकि अलार्म घड़ी रखी थी मेरे को पूरा याद है, अचानक 2:30 बजे करीब किसी ने आके मेरे को हाथ लगाया, उठो उठो उठो, 3 बार हाथ लगाया और एकदम आवाज आई, उठो उठो उठो। और जैसे आवाज आई तो मैंने देखा तो कमरे में तो कोई नहीं था, गेट भी बंद, खिड़की भी बंद, तो कोई भी नहीं था। मैंने देखा भाई किसने मेरे को जगाया, तो मेरी उम्र भी छोटी थी उस समय, मैं मुश्किल से 15 साल का ही था। तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं है, किसने मेरे को जगाया। तो मैंने रूम में देखा तो रूम में तो कोई नहीं था। तो ऐसे ही मैं कम्बल ओढ़ कर बैठ गया बेड पे और देखने लगा भाई कौन है। तो ऐसे एक दो मिनट हुआ होगा, मैं सोच ही रहा था किसने मेरे को जगाया, और मेरा धीरे धीरे मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और एकदम एकदम ठंडा हो गया, और धीरे 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 मैं इस शरीर से बाहर निकला। और बाहर निकल के मैंने अपने आप को देखा, मैं सामने हूँ और ये शरीर अलग है। और जैसे मैंने शरीर को देखा और मैं देख रहा था कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी फीलिंग थी। तो आत्मा का ज्ञान तो था नहीं था, तो मैं इसको देखता रहा और देखते देखते ही स्लोली 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 मैं एकदम बाहर निकला और रूम से बाहर निकल के एकदम सीधा सूक्ष्म तत्व में पहुंच गया। उस समय तो ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत सफेद सफेद प्रकाश, एकदम गोल्डन प्रकाश था। तो मैं वहां अपने आप को पाया और मैं वहां ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो देखते देखते इतनी अंदर से खुशी जैसे अंदर से कोई फाउंटेन फूट गया। बहुत खुश था मैं और एक आनंद से मैं घूम रहा था। ऐसे करते करते मैं तो नीचे, पिताजी का रोज का रूटीन था, तो 4 बजे उन्होंने जैसे ही आए उन्होंने खटखट किया और मैंने ऊपर से देखा और मैं धड़ लगे से नीचे आ गया। और जैसे ही शरीर में आया तो एकदम जोर से झटका लगा, और झटका लगा तो पिताजी बाहर थे तो आवाज दे रहे थे, तो मैं बोलने की कोशिश किया तो आवाज नहीं थी। तो मैं चुपचाप रहा। फिर काफी देर बाद 5-10 मिनट के बाद जब मैं देखा क्या मैं बहुत मैंने हाथ लगाया तो मैं ठीक था, फिर देर से आवाज आई, तो फिर मैं गेट खोला और बाहर आया और पिताजी को बताया कि मैं शरीर से बाहर निकला, ऐसे ऐसे मैं ऊपर गया, ऐसे सारा वर्णन उनको सुनाया। लेकिन पिताजी को कुछ समझ में आया नहीं, उन्होंने कहा चलो ठीक है आपने सपना देखा हो, जाओ पढ़ाई करो। और मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे कोटा में एक एक व्यक्ति को बोलूं, इतनी अंदर से खुशी, इतनी खुशी मैं सबको सुनाऊं कि मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा, इतना अंदर से मतलब मुंह में आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। मैंने माँ को बताया, बड़े भाई को बताया, भाभी, लेकिन उनको किसी को कुछ भी नहीं, सबने कहा ठीक है ठीक है, पिताजी ने कहा जाओ पढ़ाई करो। और फिर मैं वापस ऊपर आ गया और रूम में आके बैठ गया, भाई इनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, और मेरे को अंदर से इतना लग रहा था मैं सबको सुनाऊं। तो ऊपर आके बैठ गया, ऐसे ही थोड़ी देर बैठा था, फिर मैं वापस शरीर से बाहर निकला और बाबा ने मेरे को सेंटर पे पहुंचाया और पूरा सेंटर घुमाया मेरे को, बाबा का कमरा, क्लासरूम, दीदी बैठी है, चेहरे किसी का समझ में नहीं आया, मुरली चल रही, सब लोग बैठे हैं, पूरा सेंटर, बहनों के कमरा, किचन, सब कुछ मेरा पूरा सेंटर घुमाया। और घुमाने के बाद और पूरा रास्ता भी बताया मेरे घर से लेकर सेंटर तक का। और बाबा ऐसे आवाज आई कि आपको यहाँ जाना है, जैसे कोई फोर्सली कोई बोलता है ना कि नहीं आपको ये करना ही है, ऐसे एकदम कहा कि आपको वहां जाना ही है। तो फिर मैं वापस शरीर में आया और आने के बाद मैं फटाफट नहाया और तैयार होके, ऐसा कोई खींच रहा है, ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे को जाना है, फटाफट मैं तैयार होके और मैं 7 बजे करीब वहां सेंटर पे पहुंचा। तो देखा तो जो मैंने देखा था वैसे के वैसे ही एक बहन बैठी है और हाथ में मुरली है और सब लोग बैठे हैं, और मैं गेट पे आके खड़ा हो गया। अब एक मन तो कह रहा था अंदर जाऊं, एक मन कह रहा था बाहर, क्योंकि पिताजी कहते थे कहीं भी जाना है तो पहले पूछ के जाया करो। तो मेरे मन में वो भी था अंदर जाएंगे पूछे कैसे आए तो क्या जवाब देंगे। तो मैं ऐसे ही बाहर खड़ा रहा, काफी देर तक खड़ा, लेकिन कोई बाहर आया नहीं। और इधर स्कूल का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं वापस घर आया और बुक लेके वापस स्कूल चला गया। तो स्कूल तो मैं चला गया, लेकिन स्कूल में मैं बैठा हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर में हूं और मैं ऊपर हूं, एकदम शरीर से अलग। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कुछ भी मेरे को पता नहीं, बस मैं शरीर से अलग हूँ, बस शरीर बैठा और मैं ऊपर ही घूम रहा हूँ। ऐसे चलते चलते 12-12:30 बज गए, स्कूल की छुट्टी भी हो गई, और मैं फिर वहां से उठा और मैं धीरे धीरे घर आया। घर आके माताजी ने कहा खाना खा लो, तो मेरे को खाने खाने की भी इच्छा नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, मैं अपने रूम में बैठ गया और बैठा बैठा मैं सोच रहा था, मैंने कहा क्या करें। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे 3-4 बज गए, फिर मेरे को मन में आया कि चलो वापस वहीं चलते हैं। तो फिर मैं वापस सेंटर गया, और सेंटर जाने के बाद तो देखा तो मैंने बेल बजाई तो एक छोटी बहन आई, तो उन्होंने कहा कैसे आए, तो मैं कुछ बोला नहीं, मेरे को ही पता नहीं मैं कैसे आया हूँ। तो मैं फिर बहन ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, फिर उन्होंने अंदर बुलाया, और बाबा का कमरा था जो मैंने सुबह देख ही लिया था। तो बहन जी ने लाल लाइट किया और मेरे को कहा योग करो। मैंने तो योग का नाम भी पहली बार सुना था, योग क्या होता है मुझे पता भी नहीं था। तो मैं बैठ गया, और बैठने के बाद तो जैसे ही बाबा का ट्रांसलाइट का चित्र था, आसपास पर्दे लगे हुए थे, तो बाबा को देखा तो बाबा की आंखों से ऐसा लग रहा था बाबा पलक झपका रहे, जैसे बुला रहे मेरे को, इशारा कर रहे, आंखों से किसी को इशारा करते ना ऐसे, बाबा मेरे को इशारा कर रहे। फिर मैं उठा और चित्र पर हाथ लगाया, मैंने कहा ये तो चित्र है। फिर मैं आके बैठा, फिर देखा तो फिर बाबा मेरे को इशारा कर रहा है। ऐसे तीन बार मेरे साथ हुआ और फिर ऐसे ही देखा, मैंने कहा कोई नहीं यहाँ। तो फिर मैं बैठा रहा और बैठे 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 धीरे 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 फिर वापस मैं शरीर से बाहर निकला और फिर वापस वतन में चला गया। फिर वहां मैं घूमता रहा, ऐसे करते करते 6 बज गए और शाम को बहन आई और फटाफट उसने सफेद लाइट की, लाइट करते मैं एकदम जोर से आके शरीर में गिरा। तो उसने कहा क्या हुआ, तो मैं बोल ही नहीं पाया। काफी देर बाद फिर मेरी आवाज आई, फिर मैंने बहन जी को बताया ऐसे ऐसे मेरा, फिर पूरा स्टोरी उनको सुनाया, सुबह से ऐसे मेरे साथ हो रहा, मैं सुबह से दिन भर से शरीर में नहीं हूँ, शरीर में बैठा हूँ लेकिन शरीर में नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ। फिर बहन को समझ में आया, वो तब ज्ञानी आत्मा थी, उन्होंने कहा बाबा ने आपको बहुत अच्छा अनुभव कराया है, ये तो बहुत कम आत्माओं को होता है कि आते ही शरीर से बाहर निकल जाना है, बहुत बड़ी तपस्या है, आप बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने बहुत महिमा किया, और जब दीदी ने महिमा, किसी बच्चे की महिमा करते तो खुशी हो ही जाती, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई।
बहुत सुंदर, बाबा ने तो आपको दीदी, फिर आपको कोर्स क्या?
तो फिर ऐसे ही दीदी को पूरा बताया, बताने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आज रोज आप रोज सुबह क्लास में आया करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर दीदी ने हमको बहुत अच्छे से प्यार किया, टोली भी खिलाया, और कहने के बाद तो उस समय दीदी ने जो बोला तो एकदम मन में ऐसा चला गया कि नहीं मुझे रोज आना है। तो रोज मैं सुबह फिर क्लास में आने लगा, और तो रोज मुरली सुनता था लेकिन ज्ञान तो था नहीं, तो समझ में तो आता नहीं था। तो बस क्लास में आता था, थोड़ी देर बैठता था, 7 बजते में उस समय 6:30 बजे करीब मुरली चलती थी, तो मुरली तो पहले से चालू हो जाती, तो मैं 7 के थोड़ी देर के लिए आता था, 5-10 मिनट बैठता था, फिर स्कूल चला जाता था। फिर धीरे धीरे जब संडे का दिन होता था, छुट्टी होती थी, तो फिर मैं रुकता था, फिर दीदी मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान देती थी, फिर धीरे धीरे ज्ञान में आने लगा।
मतलब आपका धीरे धीरे कोर्स हुआ, लेकिन
छुट्टी तो इसलिए मिल गई क्योंकि हमारे जो लौकिक गुरु जी थे, लौकिक गुरु जी के ऊपर मेरे पिताजी का बहुत फैत था। वो प्रिंसिपल होते हुए भी अगर गुरु जी कहेंगे दिन में भी रात है तो मेरे पिताजी कहते थे हाँ रात ही, इतना फैत था। उनकी वजह से हमारा घर बहुत सात्विक था, हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं था, बहुत सात्विक था। गुरु जी ने कहा और हमारे घर में होना था, क्योंकि गुरु जी के लिए हमारा पिताजी ने अलग रूम भी बना रखा था, वहां सत्संग वगैरह होती थी। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी को, मैं जब माँ के पेट में था उसी समय गुरु जी ने मेरे को पिताजी को बता दिया था कि ये जो आत्मा आपके घर में आई है ये थोड़े दिन की मेहमान है, इसके अच्छे से पालना करना, ये थोड़े दिन में जब बड़ा होगा तो चला जाएगा अपने आप ही। लेकिन पिताजी, गुरुजी ने ये नहीं बताते कहाँ जाएगा। तो पिताजी को ये था कि ये तो बहुत अच्छी आत्मा है जो मेरे घर में आई है, इसलिए पिताजी ने बहुत सहयोग दिया। इसलिए पिताजी के सहयोग से फिर मैं ज्ञान स्वरूप में भी आया, और पिताजी के सहयोग से बहुत जल्दी समर्पित भी हो गया और ज्यादा परेशानियां नहीं आई।
बहुत सुंदर घनश्याम भाई जी। देखो बाबा के बच्चे बनते हैं तो फिर सबसे पहली मन में इच्छा होती है कि हम अव्यक्त बाप दादा से मिले। तो आप तो सब पुराने हैं, मैं रोहित भाई जी से पूछूंगा कि जब आप बाबा के बच्चे बन गए, परिवार के लोग ज्ञान में चलने लगे, और जब आप पहली बार मधुबन में आए अव्यक्त बाप दादा से मिलने, उस समय आपकी मनोस्थिति कैसी थी, मधुबन का माहौल कैसा था, और वो जो अव्यक्त मिलन था वो कैसा था? क्योंकि आज हम सभी अव्यक्त मिलन हम भी करने वाले हैं। आपका जो शाम का सेशन होगा वो बहुत स्पेशल है, तो इसीलिए मैं रोहित भाई से अनुरोध करूंगा कि उस जो दृश्य था उस समय पे वो कैसा था।
ओम शांति। हर एक का अपना अपना सुंदर अनुभव आप सब सुन रहे हैं। जैसे शैलेंद्र भाई ने बताया कि बाप दादा से प्रथम मिलन का अनुभव, मैं उसके पूर्व आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं बाबा से बाद में मिला, पहले समर्पित हुआ। ज्ञान लेते ही मैं 1 साल के अंदर अपने जीवन को समर्पित कर दिया इंदौर में, और इंदौर में आने के बाद जब वहां की बड़ी दीदी को पता चला कि ये अभी तक बाबा से भी नहीं मिला है और समर्पित हो गया है, तो मुझे अकेले को वहां की दीदी, बड़ी दीदी ने मुझे मधुबन लेकर के आई थी, मुझे याद है। और जैसे मधुबन आए, मधुबन तो मैं एक बार आ चुका था लेकिन बाबा से नहीं मिला था, लेकिन बाबा से मिलने के लिए 89 में आया। शाम के समय ओम शांति भवन में उन दिनों एकदम दिन भर, जैसे अभी आप सबको कहा गया है कि आज पूरा दिन साइलेंस में रहना है, बाबा के साथ अनुभव करते रहना है, तो ये हर बार बाबा मिलन में शुरू से होता रहा है। और जैसे ही गुलजार दादी जी स्टेज पर आई तो मैं बिल्कुल सामने ही बैठा था ओम शांति भवन में, और बाबा की एकदम प्रवेशता का अनुभव हुआ, जैसे वो महाज्योति शिव बाबा परम धाम से नीचे गुलजार दादी के मस्तक में बैठकर हम आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं। इतना सुखद अनुभव, ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, जिस घड़ी का हमको जन्मों से इंतजार था, इस जन्म में भी भक्ति किए तो सचमुच भक्ति का फल बाबा देने आ गए। और तब तक वो एक एक करके मिलना का पाठ बंद हो चुका था, वो वर्ष पहला वर्ष था जिसमें ग्रुप वाइज बाबा के सामने आते थे, 7 या 8 ग्रुप बनाए गए थे, पहला 4 ग्रुप हाल में रहते थे, बाद के 4 ग्रुप को भोजन करने की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन हम तो पहली बार आए थे तो पूरा समय बाबा के सामने बैठे रहे। 7 बजे बाबा आए और करीब 2:30 बजे वापस बाबा गए, तो इतना देर तक बाबा का वो एक्टिविटी हम देखते रहे, कैसे बाबा बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, कैसे एक एक को प्यार कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा मेरे से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। भले वहां 3,000-4,000 की सभा थी, लेकिन वो मिलन, वो प्रथम मिलन पूरा जीवन के लिए अविस्मरणीय छाप बन गई। तो सचमुच बाबा के साथ जब हम प्रथम मिलन मनाते हैं संगम युग में, तो वो बहुत बड़ा यादगार बन जाता है। और उसके बाद तो भल अनेक बार मिले बाबा से, लेकिन पहली बार जैसे बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत दृष्टि दे रहे हैं, बहुत शक्ति भर रहे हैं, और जैसे बाबा को भी, हमें भी ऐसा लगता था बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा पूरा समय ऐसा लगता था जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे स्नेह दे रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी है बाबा के प्यार का जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो अविस्मरणीय छाप सदैव दिल में बनी रहती है। ओम शांति।
सुरेश भाई जी, आप बाबा, आपका बाबा के साथ, अव्यक्त बाप दादा के साथ कैसा अनुभव रहा?
ओम शांति।
जब आप मिले तो कैसा अनुभव रहा?
हम सभी कर्नाटक से आने के समय में, उस समय 4 दिन लगता था, 4 बार ट्रेन चेंज करना।
कौन सी ईयर में पहली बार बाबा?
तो 1979 में बाबा को पहली बार मिला, अव्यक्त बाप दादा को। उस समय ओम शांति भवन भी नहीं था पांडव भवन में, पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल करके है, तो मेडिटेशन हॉल में बाबा मिलता था। उस समय का पार्टी केवल 250 लोग या 300 के अंदर लोग रहता था, तो उस समय इस जैसा सीजन नहीं रहता था। तो एक बार हम आए तो 10 दिन रुकता था, 10 दिन में 3 बार या 2 बार अव्यक्त बाप दादा का मिलन होता था। तो हम उतना दूर से आता था, इतना थकान हो जाता था, तो कुमार लोगों को इतना चांस मिलता था, क्यों मना, लगेज उठाने के लिए हमको लेके आता था। हर बार 1979 से कभी भी अव्यक्त बाप दादा का मिलन मिस नहीं किया, कब कब टर्न है हमको लेके आता था। तो हम आते माउंट नीचे अब रोड से माउंट अबू आते आते पांडव भवन आंगन में आने से सब दीदी, बड़ी दीदी आपको मालूम होगा, मनमोहिनी दीदी और दादी प्रकाशमणि जी, सभी दादियां, उस समय सभी दादियां भाई लोग सभी पांडव भवन में ही रहता था। हम सभी आते ही सब पांडव भवन में आंगन में खड़े होके, आओ बच्चे आओ, सभी को बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है, ऐसे हमको स्वागत करता था। वो सीन देखकर, वो प्यार, वो खुशी, वो सीन देखकर हमारा थकान पूरा मिट जाता था, बहुत ही सुखद अनुभूति हो जाता था। उसके बाद हम सभी, दादी बोलता था आप सभी फ्रेश होके आ जाना, फिर दादी दीदी सब आपको मिलेंगे, तो हर एक दादी या हर एक को मिलता था। फिर उसी दिन या दूसरा दिन शाम को अव्यक्त बाप दादा का मिलन का प्रोग्राम रहता था। उस समय हर एक एक को बाबा मिलता था, वरदान बोलता था, मुख में टोली डालता था, प्रसाद डालता था। बहुत ही वर्णनातीत अनुभव है। पहली बार हम बाबा को मिला तो हम छोटे छोटे गीता पाठशाला में 8 लोग या 10 लोग इतना ही रहता था। वो लोगों को बाबा सामने ऐसे राउंड खड़े करता था, जैसे प्राइमरी स्कूल में मास्टर बैठता है, बच्चे लोग ऐसे सामने खड़े रहते हैं ना, ऐसे हम खड़े हो जाता था। हर एक एक को अव्यक्त बाप दादा दृष्टि से देखता था, दृष्टि देता था। तो इतना सुंदर, इतना सुखद, इतना प्यार, इतना स्नेहा, हम उसको वर्णना कर नहीं सकते हैं। फिर बाबा दृष्टि देते, उसके बाद वरदान बोलता था। तो पहला वरदान मेरे को बाबा ने दिया, बच्चे लॉटरी मिलने से क्या बन जाता है। तो बाबा मिला, लॉटरी मिल गया, आप पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे हो, ऐसे बाबा ने वरदान दिया। फिर मुंह में टोली मेरे मुख में डाला। तो 1986 तक बाबा सभी को मुंह में टोली डालता था। उसके बाद बाबा हाथ में देने के लिए प्रारंभ किया। उसके बाद ग्रुप वाइज व जोन वाइज मिलने के लिए प्रारंभ हो गया। तो बाबा का मिलन का अविस्मरणीय जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते। अव्यक्त बाप दादा, हम साकार बाबा को नहीं देखते हुए भी, मम्मा को भी नहीं देखा, लेकिन दादियों से, दीदियों से, अव्यक्त बाप दादा से बहुत ही सुंदर पालना प्यार प्राप्त किया। वही हमारा जीवन का एक आधार बन गया।
घनश्याम भाई जी, आप बाबा से पहली बार कैसा आपका अनुभव था?
ओम शांति। बाबा से पहली बार मिलने का अनुभव, 85 में हम सबसे पहले मधुबन में आए थे। पहली बार में बाबा से मिलने ही मधुबन आया था, उसके पहले मधुबन नहीं आए थे। तो उस समय का, जैसे सुरेश भाई ने बताया कि एक एक व्यक्ति, सब लोग बैठते थे और एक एक व्यक्ति, हम ओम शांति भवन में बाबा से मिले 85 में, तो एक एक व्यक्ति स्टेज पे आते थे और बाबा के सामने खड़े होते थे और बाबा वरदान देते थे। लच्छू दादी बैठती थी, लच्छू दादी बाबा के हाथ में टोली देती थी और बाबा अपने हाथ से टोली मुंह में खिलाते थे। तो इस प्रकार से मैं चलता था। तो जब से, सबसे पहले जब मैं बाबा से मिलने आया, तो जैसे मेरा नंबर आया और मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ, तो बाबा ने मेरे को देखा, दृष्टि दिया। काफी देर तक बाबा दृष्टि देते रहे। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा बाबा। फिर बाबा ने दृष्टि दिया। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे हिम्मत है? मैंने कहा बाबा। फिर बाबा ने दृष्टि दिया, फिर पूछा, बच्चे हिम्मत है? एक ही लाइन 3 बार बाबा ने मेरे से पूछा। मैंने कहा बाबा। फिर बाबा ने दृष्टि दिया और बाबा 10 मिनट तक वरदान देते रहे। बाबा ने कहा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। एक कदम हिम्मत का रखोगे, 1000 कदम बाप की मदद मिलती रहेगी। फिर बाबा वरदान देते रहे। वरदान देने के बाद फिर लच्छू दादी ने बाबा के हाथ में टोली दिया और बाबा ने ऐसे किया, तो मैं ऐसे, मेरे हाथ ऐसे थे और बाबा का हाथ ऐसे था, तो मैं देखता रहा। फिर बाबा ने ऊंचा किया तो मैंने मुंह किया, फिर बाबा ने अपने हाथ से मुंह में खिलाया। और जैसे ही बाबा ने मुंह में खिलाया, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरा एक एक रोम रोम खड़ा हो गया। भगवान अपने हाथ से टोली खिलाए और मैं ऐसा लगा जैसे मैं शरीर में नहीं हूं, एकदम जैसे ऐसा हो गया। और बाबा ने दृष्टि भी नीचे कर ली, हाथ भी नीचे कर लिया, और मैं तो हिलू ही नहीं, मेरे जैसे शरीर में मैं नहीं हूं। फिर सिली बहन आई, मेरा हाथ पकड़ा, फिर मेरे को आगे बढ़ाया, क्योंकि एकदम ऐसा लगा कि जैसे मैं एकदम जैसे वतन में चला गया, एकदम बाबा, जैसे ही बाबा ने टोली खिलाई, मेरे को इतने अंदर से इतना गदगद, इतनी खुशी हुई, तो वो तो एक अलग ही अनुभव है। ओम शांति।
बहुत सुंदर। सुभाष भाई जी, आप भी कृपया बताएं, आप फर्स्ट मिलन आपका बाप दादा के साथ कैसा था, शॉर्ट में?
इससे तो अव्यक्त बाप दादा के साथ पर्सनल मुलाकात तो नहीं हो पाया, लेकिन साक्षात्कार में तो कोई कमी नहीं रखा बाबा ने। जैसे कि हमने छोड़े थे, ज्ञान से 3 महीना पहले मम्मा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ने, उस समय तो मम्मा वाली मम्मा का परिचय नहीं था, लेकिन हम सोचते थे गायत्री माता होगा, सत्य वस्त्र धारिणी। लेकिन जब आश्रम में आया तो मालूम पड़ा जो यही मम्मा है। मम्मा ने रात को 3 शब्द मुझे वरदान के रूप में दिए थे। तो कहे थे, पहला कहे थे, कभी फिल्म नहीं देखना। तो उस समय हम तो फिल्म हॉल कभी गए नहीं थे, फिर भी मम्मा ने कहा था फिल्म नहीं देखना। दूसरी बात था, तो प्याज लहसुन नहीं खाना। और प्याज लहसुन सत्संग में तो खाते नहीं थे, आश्रम में खाते नहीं थे, जब घर में वापिस आया था तो खाना पड़ता था मजबूरी में। तो मम्मा ने कहा था प्याज उसमें नहीं खाना ना। अब तीसरी बार इतना गंभीर था, गंभीरतम था, तो समझ में तो नहीं आया था। मम्मा ने बोला था तो दृष्टि को पावन करना। और वो तीन वरदान दे करके वो चले गए, तुम्हारा सारी मनोकामना पूर्ण होगा जब तुम वो तीन बातें स्वीकार करेंगे। तो मैं फिर जागृत में आया, बैठ कर देखा कुछ नहीं, चारों तरफ। उस समय में रात में आधा से नींद नहीं आया। ठीक तीन महीना के बाद है तो कैसे ज्ञान में आया आप कह रहा हूं। उसी रास्ते में अनेक बार गया होगा, तो तीन चार दोस्त मेरे साथ थे और अचानक जैसे कि चुंबक की तरफ मेरे पांव में किसने बेड़िया डाल दी। ऊपर गया, बोर्ड देखा और बोर्ड में लिखा था गीता पाठशाला, तो ऊपर मंजिल था। तो नीचे एक माता जी बैठी थी, हमने पूछा माता जी ऊपर क्या हुआ है, तो माता जी ने बड़े अजब जवाब दिए, पता नहीं ऊपर क्या है लेकिन सुबह शाम लड़का लड़की आते जाते बहुत है। मैं बोला गीता पाठशाला लड़का लड़की आते जाते हैं, मुझे थोड़ा वंडर लगा। तो फिर मन में साथियों को बोला चलो थोड़ा देख लेते हैं। तो साथी लोगों ने मेरे को आश्चर्य से कहने लगा तुम्हारा अच्छा नहीं है, कहीं भी सत्संग होता तो घुस जाते हो। मैंने बोला चलो हम चलो कह देंगे, बोर्ड देखकर आ गए थे। तो जैसे कहते ना स्वर्ग में जाते जाते कौन कहां रह जाता है, पहले दोस्तों नीचे रह गए, एक दोस्त मेरा साथ दिया वो भी पहला मंजिल में गया, बोलता भाई ये सब क्वार्टर है हम नहीं जाएंगे। जब हमने ऊपर अकेला गया तो देखा सच मन से रेड लाइट शाम के 6:30 बजे रेड लाइट लगा हुआ है, बैठे हुए दो चार भाई बहन बैठे हुए हैं अंदर में। हमके तो साहस भी नहीं हो रहा था इतना स्वच्छता देख करके, तो हम भी उसी समय में धोती पहना हुआ था। तो अंदर में गया और बैठ गया, बैठ गया तो आधा घंटा तक हम गुम हो गए। मुझे भी याद नहीं रहा जो मुझे कोई नीचे छोड़कर किसको आई है। तो इस प्रकार रेड लाइट से व्हाइट लाइट हुआ, फिर वो मुरली चालू किए, मुरली भी आधा घंटा चला, तो एक घंटा तक चला गया। मुझे याद नहीं जो मुझे कोई इंतजार नीचे में किसी को छोड़कर आया हूं, इसलिए अपने आप वेट करके चले गए थे। उस दिन का जो मुरली था तो गीता के भगवान के ऊपर था, जो भगवान अलग और श्री कृष्ण अलग। पहला बार में अपना जैसे बाबा कहता ना कान मीठा हो जाता है, तो हमने सोचा हम तो कृष्ण को भगवान माने थे, तो उस दिन देखा जो माने कृष्ण अलग और भगवान अलग। इस प्रकार की एक दिन घंटा चला गया, सेकंड थ्री अपने कोर्स किया। वो तो बड़े अनुभव की बात था कुछ कोर्स की, आपके एक सेकंड कह देता हूं। एक भाई ने छात पर लेकर के मेरे को वापिस चले गए और सामने सामने बैठ कर दृष्टि दिए। जैसे दृष्टि दिए तो बोले ओम शांति कहो, तो मैं ओम शांति नहीं कहा। सेकंड बार बोला ओम शांति कहो, मैं ओम शांति नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ओम शांति कहेंगे तो मेरा गुरु हो जाएगा, क्योंकि गुरु से मेरा नफरत हो चुका है, मैं गुरु करके थक चुका हूं। अब इनको भी ओम शांति मंत्र दे देगा तो इनको भी गुरु मानना पड़ेगा, तो इसलिए हमने गुरु से मुझे भय हो गया था। एक तरह से शब्द तो अच्छा नहीं है, गुरु से नफरत आ गया, तो मैं गुरु अभी नहीं करूंगा किसी से। तो इस प्रकार की फिर तीसरी बार कहा कि कुछ बोल नहीं रहे, तो फिर मैंने जैसे कि श्रद्धा तो नहीं तो बोल दिया ओम शांति। मैं बोला आप आगे तो बढ़े कम से कम। तो फिर जो आगे बोले अपने आप को जानते हो, मैंने बोला अपने आप को जानता तो आपके पास क्यों आता। तो इस प्रकार की वो आत्मा की लेसन जब कहे, तो मुझे तो मालूम था गीता में आत्मा अलग है शरीर अलग है, लेकिन मैं आत्मा हूं वो भाव नहीं था। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर माने विनाशी, ये तो ज्ञान पढ़ा था, यहां तक तो गए थे, लेकिन मैं आत्मा हूं वो अनुभव नहीं था। बा वो कहीं नहीं कहता था आप आत्मा हो। तो इस प्रकार की वो थे तेलुगु और मैं उड़िया। अब वो मेरे भाषा समझते नहीं, मैं इनका भाषा समझते नहीं, लेकिन वो एक घंटा तक जो मेरे कोर्स किए तो बड़े अच्छी बात था। तो वो क्या कह रहे थे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो जिस प्रकार की बैठे थे तो मैं देख रहा था इनका मुख खाली जैसे कि हिल रहा था, वो इतना स्टैचू से जैसे बैठे थे। और मैं देख रहा था ऊपर से एक लाइट आ रहा है और लाइट ही वो भाई के सिर पर पड़ रहा है और वहां से रिफ्लेक्स होकर के मेरे को आ रहा है, और मैं इस सीन में ही गुम हो गया था। और वो घंटों भर में क्या कोर्स क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सीन देख रहा था ऊपर से एक लाइट के आदेश किरण आ रहा है, वो भाई के पास पड़ रहा है, वो इधर से आ रहा है। इस प्रकार की एक घंटा बीत गया। सेकेंड दिनों फिर दूसरा मेरा टीचर चेंज हो गया। थर्ड दिन आया, उसी दिन सेकेंड दिनों मेरे प्यार से आंसू बहने लगा, क्योंकि इतना आत्मा परमात्मा का क्लियर ज्ञान दिए। तो थर्ड दिन फिर मेरा टीचर चेंज हो गए। इस प्रकार की मेरे तीन टीचर हो गए कोर्स कराने में। 7 दिन के बदले 15 दिन कोर्स चला, क्योंकि मेरा पहला दिन का जो प्रश्न होता था सेकेंड दिन वो प्रश्न आंसर करते करते वो टाइम बीत जाता था। इस प्रकार की 15 दिन का कोर्स चला, 7 दिन के अंदर में मेरा प्याज लहसुन छूट गया। प्याज लहसुन छूटा कैसे आपको थोड़ा सा 2 मिनट कहता हूँ। लेकिन जब बहन के पास था तो मैं जाकर के बोला, बहन जी मेरे को खाली आलू और चावल दे देना और कुछ नहीं देना। क्यों? मैं कहा नहीं जी मैं भी प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, क्योंकि नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। तो 2-3 दिन दिया, फिर मेरे प्यार से पूछा, भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने बोला अब मैं तो वो चीज खाने नहीं चाहता, वो आपको कहूंगा तो आप देंगे नहीं, इसलिए मैं अपना रास्ता देख रहा हूँ। बोलते ठीक है मैं अलग करके आपको दूंगा। तो इस प्रकार इसने भी सहयोग दिया। तो इसके बाद कोर्स पूरा हुआ, ज्ञान भी चला, वो तो पेपर भी बहुत आया, 1 मास के अंदर पेपर भी आया। तो फिर 4 मास हुआ तो मधुबन आने का विचार चला। तो उस समय में भुवनेश्वर में संदेशी दादी थी, तो मधुबन से निमंत्रण गया था ऑल इंडिया में। तो जो 2 मास के लिए हार्ड वर्कर सेवा देना चाहते हैं मधुबन आओ। उस समय में 93 से ज्ञान सरोवर शिलान्यास हुआ था, 94 में हम सब आ गए थे। तो निमंत्रण था सब हार्ड वर्कर के लिए 2-2 मास आने के लिए। तो उस समय पहला चांस हमको मधुबन आने के लिए मिला। दादी ने छुट्टी प्यार से दिए, भले जाओ, हम 10 भाई आए थे 2 मास के लिए। अब 2 मास आज तक चल रहा है, 2 मास आज तक चल रहा है। और पहला बाबा की मुलाकात 94 अक्टूबर महीना में पांडव भवन ओम शांति भवन में हुआ। तो 2 मास पहले हमको साक्षात्कार हो गया था हॉल का। तो हम उस समय, आजकल तो मीडिया हो गया, उस समय तो इतना नहीं था, लेकिन रात में हम देखा एक हॉल है, हॉल के पास एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता के पास में बैठा हूं। तो सचमुच जैसे कि मधुबन आया अक्टूबर मास में, तो उस समय पांडव भवन में थे और यहाँ सेवा के लिए आते थे। तो वहां पहला बार वो स्टेज के पास में बैठने को मिला। और सबसे बड़ी बात आपको कहूं, मैं मुरली तो वहां सुने थे, 8 मास 10 मास के 1 साल के अंदर यहाँ आ गए थे, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा एक संदेह था, इतना बड़ा भगवान आ रहे हैं, ये छोटी छोटी बात इतना शिक्षा देते हैं, वो किससे बोलना, इतने मीठा से बोलना, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, इतना छोटी छोटी बात भगवान बोलता है। तो माने ज्ञान तो अच्छा लगता था, प्यास तो बुझ गया था, लेकिन ये संदेह था। तो जैसे ही अक्टूबर मास में बाबा से अव्यक्त बाबा का मुलाकात हुआ और सेकेंड दिन प्रिंट मिल गया, मुरिल का प्रिंट मिल गया, तो हमने देखा बाबा जो कहा था एक्यूरेट प्रिंट हुआ है। तो मेरा विश्वास हुआ जो मुरिल जाता है तो बाबा वो सही कहा, साकार हो, अव्यक्त हो, साकार में कहा। तो इस बार सेकेंड बाबा फिर 95 में जो उद्घाटन हुआ, पर्सनल मिलने के लिए इसी हॉल में बाबा के पास हम आए थे, इंजीनियर 100 लोग थे। तो उसके बीच में हमको सुपरवाइज के रूप में थोड़ा सा चांस मिल गया था टोली लेने के लिए। वो बड़े अनुभव की बात, क्या दुख भी नहीं, दुख भी होता है और सुख भी लगता है, क्योंकि सबके जब लाइन में पूरा हो गया, लास्ट में मैं पहुंच गया था। अब टोली सबको देते, बाबा ने आपूल दिया था इसी स्टेज पे, लेकिन मैं जब आया बाबा के पास में, वो ब्राह्मणी ने वो टोली हाथ में, बाबा के हाथ में दिया नहीं। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं तो बाबा के सामने खड़ा हूं और ब्राह्मणी बाबा के हाथ में ऐसे पीछे से टोली देता था, बाबा के हाथ में वो टोली नहीं दिया, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मैं भी आगे हूं, आगे जब नहीं जा रहा हूं तो, और ब्राह्मण भी कुछ आगे भी देख नहीं रहा है, तब तक मैं खड़ा हूं, बाबा से नयन मुलाकात हो रहा है। फिर बाबा ने तो हाथ हिला करके ऐसे कहा, तब फिर मैं आगे बढ़ा। सच बताऊं वो घड़ी जो स्थिति था, मेरा तो दुख की घड़ी था क्योंकि बाबा के पास गया था और बाबा टोली नहीं दिया और वहां से आगे गया। तो 2-3 दिन के बाद ज्ञान चिंतन किया, बड़े बड़े भाई से मिला, मैं नहीं कहा जो मेरे को बाबा ने टोली नहीं दिया, मैंने पूछा, एक भाई से पूछा जो कि सूरज भाई से एक बार भी पूछा, तो नाम नहीं हुआ जो मैंने बाबा को गया था, मैंने बोला एक भाई ने बाबा के पास गया था और टोली नहीं दिया बाबा ने, तो बोला आपको कुछ और कुछ चाहिए होगा तो इसलिए बाबा ने नहीं दिया, तो मेरा सेटिस्फाई भी नहीं हुआ। 2 दिन के बाद मेरा ज्ञान के चिंतन चला, 3री रात मेरा आंसर मिला। तो मेरे को आंसर मिला, मैं चिंतन करके देखा, मैं बोला जो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, द्रौपदी या कृष्ण जी ने हाथ में थोड़े कुछ दिया था, वो तो हाथ में आशीर्वाद दिया था, इसे हाथ में तो कई प्रकार की इसका वरदान था, तो मुझे क्यों नहीं, मैं चिंता करके भगवान आगे के लिए मेरे लिए कुछ आशीर्वाद दिया होगा जो कि, और इसे आशीर्वाद ने आज यहाँ आपके सामने 94 से आज तक रखा है। अच्छा,
बहुत सुंदर। देखो हरेक के बहुत बहुत अनुभव हैं, आप लोग भी अव्यक्त बाप दादा से मिले होंगे। अच्छा, इनमें जो अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं वो कृपया हाथ उठाएं। देखो बहुत सारे लोग मिले हैं हम लोग, जब जैसे मैं अपना अनुभव सुनाऊं कि जब आप अव्यक्त बाप दादा के सामने जाते हो, सारे सीनियर लोग बैठे हैं, हम लोगों को ओम शांति भवन में मिलने का मौका मिला था, तो जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव था, जब आप बाबा से दृष्टि लेते हो तो आप किस सारे संकल्प जैसे समाप्त हो जाते हैं, जो निर्विकल्प स्थिति बोलते हैं, ये हर एक का अनुभव होगा। बाबा की जो आंखें बोलते हैं ना, वो सच में ऐसी होती है ना, जैसे बहुत गहरी, आप दृष्टि लो तो आपके संकल्प नहीं चलते। इसीलिए बोलते हैं ना, जब आप योग में होते हैं ना, तो जैसे समय रुक गया है, वो मोमेंट थम गए। तो ये बाबा के साथ जिन्होंने भी मुलाकात की है, जो भी आए, एक विशेष विशेष अनुभव होता ही है ना। तो इतने सुंदर अनुभव सुनाने के लिए आप सबको सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित भाई जी से है। कुछ दिन पहले हमारा दादी डे था, 25th ऑफ अगस्त। तो दादी के साथ, क्योंकि आपने बहुत पालना ली है, आप दादी के साथ का भी हमें अनुभव थोड़ा शेयर करें।
बड़ी दादी के साथ तो वैसे बहुत सारे अनुभव हैं। जब मैं एकदम नया ज्ञान में आया था, बिल्कुल नया, मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने का हुआ था, तब बाबा दादी छत्तीसगढ़ टूर पर थी और एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, और बीच में हमारा गीता पाठशाला पड़ता था। तब हम लोग बिल्कुल नए थे, हमें इतना पता भी नहीं था कि दादी को यहाँ रोक सकते कि नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगा दिया था। और कुछ बड़े भाई लोग पहले आए, उन्होंने कहा दादी नहीं रुकेगी, दादी के पास टाइम नहीं है। फिर भी हम लोग खड़े रहे, गुलदस्ता लेकर के, फूल हार लेकर के। बड़ी दादी आई और दादी ने जैसे हम लोग को देखा, गाड़ी रोक दिया। और दादी ने पूछा कि कहाँ गीता पाठशाला चलती है, तो बिल्कुल रोड के किनारा ही गीता पाठशाला था, और वहां तक हम लोगों ने फूल बिछा रखा था। तो दादी गाड़ी से उतर करके पैदल गीता पाठशाला तक गई, सबको दृष्टि दिया, एक एक से पूछा और कहा कौन मुरली सुनाते हैं। तो शुरू से मैं ही वहां मुरली सुनाया करता था गीता पाठशाला में। तो ये शुरुआत में ही दादी जी के साथ का बहुत अनुभव। मधुबन आने के बाद हर वर्ष शुरुआत में दादी किचन वालों से विशेष मिलती थी, सीजन शुरू होने से पहले और सीजन पूरा होने के बाद। जैसे घर का एक मुखिया अपने सदस्यों को कुछ न कुछ, घर के लोगों को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ही मुझे याद है सूर्य भाई जी के साथ हम लोग मुश्किल से 8-10 लोग किचन के मेन मेन डिपार्टमेंट वाले दादी के साथ पांडव होने बैठते थे। बढ़िया पिकनिक जैसे माहौल रहता था। और मैं तो वैसे भी थोड़ा हाइट में छोटा और वैसे भी देखने में भी छोटा, तो दादी कभी पूछती थी बहुत छोटा है, कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है। तो सूर्य भाई जी बताते थे कि दादी ये रोटी डिपार्टमेंट संभालता है, पढ़ा लिखा है। तो दादी पूछती थी कोई टेंशन तो नहीं होता डिपार्टमेंट संभालने में, मतलब इतना जैसे घर की जैसे माँ बाप जैसे पूछते हैं अपने बच्चों को, ऐसे पूछती थी और एकदम हल्का कर देती थी। कई बार दादी यहाँ ज्ञान सरोवर चक्कर लगाने आती थी, रोटी डिपार्टमेंट में आ जाती थी, और जिन लोगों ने देखा है वो रोटी डिपार्टमेंट में कैसे बनता है, बीच तवा से 10-10 रोटी निकाल करके हम लोग सिगड़ी में डालते हैं 10 रोटी। तो दादी वहां बैठ करके गिनती करती थी, 10 रोटी डाला उसमें 8 फूला 2 नहीं फूला। अच्छा, दूसरी बार दादी बोलती थी अजय को 10 फूल गया, ताली बजाती थी। तो इतना जैसे इतना बड़ा संस्था का हेड होकर के भी इतना घरेलू प्यार, घरेलू स्नेह दादी दिया करती थी और हल्का करती थी। तो अनेक अनुभव है बड़ी दादी के साथ का। मैं सदैव, मुझे लगता था कि बाबा से, जब मैं ज्ञान में आने थी ही बाबा को मैं बोलता था, बाबा आप साकार में हमको क्यों नहीं मिले। कई बार ऐसा लगता था, भाग्यशाली वो आत्माएं जिन लोगों ने साकार में बाबा को देखा। लेकिन बड़ी दादी के जब से हम सानिध्य में आए, बड़ी दादी का प्यार मिला, तो बड़ी दादी में मैं हमेशा बाबा और मम्मा का मिश्रण देखता था। जैसे ऐसा लगता था दादी को देख करके कि हमें साकार में माँ बाप मिल गए। तो इस तरह से सचमुच बड़ी दादी का प्यार और बड़ी दादी का स्नेह के कारण ही आज हम अपने अपने डिपार्टमेंट में हल्के रहते हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे बड़ी दादी पीछे खड़ी होकर के हमें ब्लेसिंग दे रही है, दुआएं दे रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। और बड़ी दादी का मदद सदैव, बाबा का तो रहता ही है,
लेकिन बड़ी दादी का मदद का अनुभव पूरा जीवन होता रहता है। ओम शांति।
सच में बड़ी दादी तो बड़ी दादी थी, जैसा भाई साहब ने बताया, मैं पांडवपुर में था, रोहित भाई आपको पता हो, टेलीफोन एक्सचेंज में था, तो दादी रूटीन था उनका, वो जैसे शाम को चक्कर लगाते थे भोजन के बाद, तो भोजन के बाद ऐसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ था, तो जो यहाँ पे वाइट वॉश कराते हैं पुरुषोत्तम भाई थे, उन्होंने ऐसे ही रुका एकदम, मतलब आप देखेंगे ना कॉमन सा आदमी, मेरा कहने के बाद छोटा डिपार्टमेंट वाइट वॉश वाला, और उस उन भाई को रोका उन्होंने और बोला, अच्छा पुरुषोत्तम देखो बारिश का सीजन खत्म हो गया है, अभी घर में हमारे विदेशी आएंगे, तुमको पता है ना तुमको क्या करना है। मतलब दादी चीफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, चीफ यू नो, और उसको एक छोटी छोटी बातें भी याद रहती थी, कौन व्यक्ति कहाँ सेवा कर रहा है, किसकी क्या सेवा है, उसको क्या करना है, यू नो, जैसे घर का मुखिया होता है, माँ भी थी तो मुखिया भी थी, इतना सुंदर मिश्रण। सच में दादी तो मतलब दादी थी। थैंक यू भाई साहब फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा एक विशेष अनुभव हम घनश्याम भाई से जरूर सुनेंगे बाबा की मदद का, क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। आपके साथ एक यू नो भालू वाला इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोग एक्चुअली उस अनुभव को सुनना चाहते हैं कि उस समय पे बाबा की मदद आपको कैसे अनुभूति हुई, क्योंकि हमने आपको देखा था भाई साहब पे भालू ने अटैक किया था मॉर्निंग में, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था लेकिन बहुत जल्दी रिकवर हुए। हाँ तो वो जो अनुभव है आपका कृपया आप हमारे साथ शेयर करें।
बाबा साहब एक चाबी है, बाबा मुरली में कहता है कि बाबा बोलने से सब कुछ खजाना खुल जाता है, सब मिल जाता है। ये प्रैक्टिकल मेरे जीवन का अनुभव है कि बाबा शब्द बोलने से कैसे मदद बाबा की मिली। तो मैं अनुभव सुनाता हूँ। हमारा रोज का रूटीन था, हम कई सालों से 2 बजे उठते हैं और 2 बजे उठ के सबसे पहले मैं स्नान करता हूँ, फिर बाबा कमरे में आता हूँ, तो ये रूटीन चलता था। फिर बाद में 5 बजे करीब हम योग से जाके और बाहर वॉकिंग करने जाता था, तो ऐसे वॉकिंग का रूटीन था। उस दिन भी हम ऐसे ही वॉकिंग के लिए निकले तो मैं यहाँ देलवाड़ा मंदिर है वहां तक जाता था और वापस आता था, तो ऐसे ही रूटीन के अनुसार मैं देलवाड़ा मंदिर तक गया और वापस आ रहा था, तो ज्ञानेश्वर के नजदीक ही थोड़ा सा जब चढ़ाई चढ़ते हैं वहां की घटना है, तो हल्का अंधेरा था, दिसंबर की घटना है 26 दिसंबर की, तो हल्का अंधेरा था, तो झाड़ी के पीछे एक भालू खड़ा होता था, तो हमको पता नहीं था, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा और उसने खड़े होकर एकदम पीठ पे मेरा हाथ मारा और जैसे मैं जमीन पे गिरा वो सीधा आया, उसने दोनों हाथों से मेरे को जकड़ लिया। मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा भालू, तो ऐसे ही उसने मुंह से खाना चालू किया, पूरा मेरा सिर खाना चालू कर दिया, और जैसे वो खाने लगा और मैं एकदम जोर से चिल्लाया बाबा बचाओ बाबा बचाओ, तो उसने पूरा यहाँ से पूरा एक खाल निकाल दिया था, पूरा गाल फाड़ दिया था, एक हाथ फाड़ दिया था, पैर फाड़ दिया था, ऐसा बहुत नुकसान कर दिया था। मैं नीचे पड़ा हुआ था, वो खा रहा था और मैं चिल्ला रहा था बाबा बचाओ बाबा बचाओ, और जैसे बाबा को पुकारा पता नहीं बाबा ने क्या अनुभव किया, क्या ऐसा कुछ किया बाबा ने, वो ऐसे ही छोड़ के ऐसे जा रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, और जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ा काफी दूर से चला गया, तो मैंने देखा ये तो चला गया, फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा तो पूरा खाल लटकी हुई थी, तो मैंने एक हाथ से खाल को पकड़ा एक हाथ से गाल को पकड़ा, धक धक खून बह रहा था, और ऐसे ही ऐसी हालत में फिर बाबा ने ऐसी मदद दिया मेरे को टचिंग में, तुमको ज्ञान से जाना है, तो फिर मैं उठा फिर वापस धीरे धीरे मैं पैदल चलने लगा, चल भी नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा तेजी से खून बह रहा था, आंखों में भी खून आ रहा था, तो ऐसे ही सड़क पे चलते चलते मैं गेट पे आया, तो जैसे गेट पे आया तो कोई मेरे को पहचान ही नहीं पाया था, तो मैंने गेट पे कहा मेरा नाम घनश्याम है और ऐसे ऐसे भालू ने अटैक किया है और आप फटाफट, तो जो भाई था वो फटाफट अंदर गया और भाग के आया, गाड़ी लेके आया, गाड़ी में डाला, फिर हमको ग्लोबल पहुंचाया, तो ग्लोबल पहुंचाया तो उन्होंने पहले से फोन कर दिया था, तो वहां डॉक्टर वगैरह पहले से मौजूद थे, तो डॉक्टर मौजूद होने के कारण फटाफट हमको आईसीयू में लेके गए, और आईसीयू में ले जाने के बाद फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया, और मैं थोड़ी देर के बाद मेरे को तो बेहोश हो गया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि सुबह 9 बजे से आपका ऑपरेशन चालू हुआ और शाम को 4 बजे तक आपका ऑपरेशन चला। फिर डॉक्टर ने तो अपना काम कर ही दिया था, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, अगर इसको होश आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाबा जाने। तो पूरे दिन पूरी रात हम होश नहीं था। दूसरे दिन सुबह जाकर ऐसे मैंने पानी मांगा तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इसको होश आ गया है, अभी एक नहीं जाएगा। तो फिर धीरे धीरे 3 महीने तक हमारा ट्रीटमेंट चला, और 3 महीने के बाद बाबा ने मेरे को बहुत अच्छा कर दिया। ओम शांति। 2016 की बात,
होपफुली आप सबको ये अनुभव अच्छे लगे होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो वंस अगेन हम अपने भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, इतने सुंदर अनुभव हमें सुनाए। थैंक यू।